अय्यूब अध्याय 3। अंत में अय्यूब ने मौन तोड़ा। अय्यूब अपने जन्मदिन को कोसता है। अध्याय 3 पद 1। अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को दिखारने और कहने लगा, देखिए उसने परमेश्वर को नहीं अपने जन्मदिन को कोसा। अध्याय 3 पद 3 से लेकर 6 तक। वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वो दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश होए, अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाया रहे, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए, घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वो आनंद ना करने पाए और ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। यहां देखिए अंधकार और अंधियारे की पुनर्वृत्ति की जा रही है। ये इब्रानी की कविता है। यहां एक ही विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। अध्याय 3 पद 7 से लेकर 11 तक। सुनो, वो रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को दिखारते हैं और लेबियातान को छेड़ने में निपुण है उसे दिखारे, उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दे, वो उजाले की बाट जोहे पर वो उसे ना मिले, वो भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, मैं मृत शिशु क्यों ना जन्मा। अध्याय 3 पद 11 से लेकर 16 तक। पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा, मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए, या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था, या मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता, वो ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही ना हो। मैं मर जाता तो ये सब समाप्त हो जाता, मैं शांत हो जाता और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। अध्याय 3 पद 17 से लेकर 26 तक। उसने कहा, उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं, उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते, उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है, वे मृत्यु की बाट जोते हैं पर वो आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं, वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर परमेश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती है और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन ना शांति ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अय्यूब की पीड़ाओं में कही गई बातों को लेकर उन पर बाइबल के धर्म सिद्धांतों का विकास करने का प्रयास मत कीजिए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट तथा यहोवा विटनेस तथा अन्यों ने पद 17 से आयुब के इन खतनों को लेकर उन पर धर्म सिद्धांत बना दिए हैं। इस दशा में दुष्ट लोग दुख नहीं पाते और थके मंदे विश्राम पाते हैं। यहां वो कब्र के बारे में कह रहा है, मैं मर क्यों नहीं गया, क्योंकि वहां तो दुष्ट को भी शांति मिलती है, वहां किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, वहां शांति व्याप्त है। अब संदर्भ पर ध्यान दीजिए कि आयुब अपनी पीड़ाओं को अनुभव करके रो रहा है। वो परमेश्वर के सत्य को वास्तव में पुकार नहीं रहा, केवल परमेश्वर और परमेश्वर की विधियों को समझने का प्रयास कर रहा था। वो वास्तव में परमेश्वर से प्रश्न कर रहा था, उसने उसे ऐसा कष्ट में जीवित ही क्यों रखा, इससे तो उत्तम ये होता कि वो मरा हुआ ही पैदा होता। अब आप कहेंगे कि इन शब्दों को धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का आधार क्यों ना माने। इसके उत्तर में आप अध्याय 38 देखें तो उचित होगा। यहां परमेश्वर के कामों को समझने में मनुष्य प्रयास करके हार चुका है और अब परमेश्वर सामने आता है। अध्याय 38 में जब परमेश्वर ने आयुब से बात करना आरंभ किया, तब परमेश्वर ने उसे प्रश्न पूछे। उसका पहला प्रश्न था, आयुब 38 का दूसरा पद, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। आयुब की पुस्तक में उस युग का महान ज्ञान निहित है। इस पुस्तक में विद्वानों, दार्शनिकों तथा बुद्धिमान व्यक्तियों का उल्लेख है। परमेश्वर कहता है कि उनकी बुद्धि अज्ञान का वचन है। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि ये समझ पाता कि वास्तव में हो क्या रहा था। इसलिए परमेश्वर ने पूछा, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। इसी अध्याय के पद 17 में परमेश्वर ने उसे पूछा, आयुब 38 अध्याय 17 पद, क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए, क्या तू घोर अंधकार की फाटकों को कभी देखने पाया है। आयुब अपने मरने के विषय कह रहा है कि मरणोपरांत तो शांति ही है और कोई कष्ट नहीं है, वहां सब एक साथ विश्राम पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसे पूछा कि क्या वो कभी मृत्यु के द्वार तक भी गया था कि देखे वहां क्या हो रहा है। आयुब, तू तो मूर्खता के शब्द कह रहा है, तू वो बातें कह रहा है जो तू स्वयं ही नहीं जानता है, तू सच्चाई को तो जानता ही नहीं है। यदि आप मरणोपरांत जीवन के बारे में कोई विचार विकसित करना चाहते हैं तो आप आयुब की पुस्तक पर आधारित हो और ना ही श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में सुलेमान के वचनों पर। भजन संहिता में भी सतर्क रहिए, क्योंकि इन लेखकों ने कई बार ऐसी बातें लिख दी है जिनका ज्ञान वे स्वयं ही नहीं जानते हैं। वे उन विचारों को प्रस्तुत करते हैं जो मानवीय बुद्धि है और ज्ञान में बहुत सीमित है। यदि आप मृत्यु के बारे में जानना ही चाहते हैं तो यीशु के वचनों पर ध्यान दीजिए, उससे अधिक कौन जानता है। मृत्यु के बारे में कोई भी सिद्धांत विकसित करने से पूर्व मसीह यीशु के वचनों पर और नए नियम में पवित्र आत्मा पर ध्यान करना आवश्यक है। परमेश्वर आयुब को झिड़कता है क्योंकि वो उस विषय पर बात कर रहा था जिसका उसे ज्ञान नहीं था। वो केवल उसकी कल्पना थी। परमेश्वर ने उससे कहा, तू गलत है। कुछ सौभाग्यशाली संत है जो एलीपस, बिलदाद तथा सोपर के समान अज्ञानी है। वे आयुब की पुस्तक से उस पद को पकड़ लेते हैं जहां लिखा है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। उनके अनुसार आयुब की यही समस्या थी। इसमें विश्वास की कमी थी जिससे उसे इन बातों का भय था, और भय का अर्थ है विश्वास की कमी। यदि उसका विश्वास दृढ़ होता तो उसे ये सब भुगतना नहीं पड़ता। ऐसा कहना एलीपस की जैसी या उन सब के जैसी मूर्खता है जो आयुब की स्थिति का विश्लेषण करना चाहते थे। इन लोगों की मूर्खता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पुस्तक के आरंभ में ही हमें बता दिया है कि वास्तव में क्या हो रहा है। एलीपस, बिलदद और सोपर को तो क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आयुब की पुस्तक का पहला अध्याय नहीं पढ़ा था। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आयुब की पुस्तक का संदर्भ देखकर कहना निरी मूर्खता है कि जिसका आपको भय रहता है वही होता है। ये सत्य नहीं होता है। आप दाऊद के नकारात्मक अंगीकार को भी पढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि शौल एक दिन मुझे मार डालेगा, परंतु आप ये ना मान ले कि परमेश्वर आपकी नकारात्मक बातों को आपके विरोध में ले आएगा। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर कहेगा ठीक है क्योंकि तूने कहा है मैं ऐसा कर देता हूं। ये कैसा परमेश्वर है। इसी प्रकार आप किसी ऐसी वस्तु के लिए सकारात्मक बात कर सकते हैं जो आपके हित में नहीं है, और परमेश्वर भी दया करके वैसा नहीं करेगा। आप परमेश्वर को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते, और कृपया ऐसा प्रयास भी ना करें, क्योंकि संसार तो वैसा ही अव्यवस्थित है, और यदि मैं परिस्थितियों का नियंत्रण करने लगा तो स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी।